शांति, तपस्या भट्टी में आज के संध्याकालीन सत्र में हमारे सन्मुख आदरणीय भ्राता मोहन सिंगल जी उपस्थित है। हम सब ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने भ्राता जी का बहुत बहुत हार्दिक स्नेहपूर्ण स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मोहन भाई जी अपनी युवा अवस्था में बाबा के सन्मुख और समीप आए, साकार मात पिता की पालना का श्रेष्ठ भाग्य आपका रहा है। लौकिक रूप में आप ONGC में उस समय सीनियर इंजीनियर की पोस्ट पर अपनी सेवाएं देते थे। जब मात पिता के संपर्क में आए तो प्रबल वैराग्य जागा और इतनी ऊंची नौकरी त्याग कर आप मम्मा बाबा के साथ साथ समर्पण रूप से सेवा में लग गए। भ्राता जी का ये विशेष सौभाग्य रहा है कि जिस दिन बाबा अव्यक्त हुए वो 18 जनवरी 69, भ्राता जी ऐसे सुना रहे थे कि 3 दिन 16, 17, 18 में मधुबन में ही था, बाबा के अंग संग था और बाबा को कर्मातीत स्थिति पर पहुंचते हुए बहुत नजदीक से मैंने अनुभव किया। तो इस ड्रामा में आपका ये विशेष सौभाग्य कहेंगे। समर्पण होकर वर्तमान समय भ्राता जी जो बाबा का ज्ञान सरोवर है एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड, वहां की सब ऑफिस की विशेष जिम्मेवारियां संभालते हैं। जो यज्ञ का साइंटिस्ट और इंजीनियर विंग है उसके आप नेशनल कोऑर्डिनेटर भी है। विज्ञान के क्षेत्र में विशेष सेवाएं और नई नई सेवाओं के लिए आपको कई सरकारी अवार्ड, 3 अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। आप बाबा के बहुत विशेष अनुभवी रतन हैं, कुमारों में भी श्रेष्ठ कुमार हैं और वर्तमान समय ज्ञान सरोवर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो भ्राता जी की वरदानी वाणी का लाभ हम लेंगे। वैसे भी क्योंकि साइंस और इंजीनियरिंग का फील्ड है तो मन को कैसे हम मजबूत बनाएं, मनोबल जो मनसा सेवा का फाउंडेशन है वो भ्राता जी का प्रिय विषय है। तो आज हमें मनोबल के विषय में भ्राता जी सुनाएंगे। लेकिन आप याद करें ये दिन, मोहन भाई जी बैठे हैं, वो दिन भी कितने प्यारे थे जब बाबा साथ हमारे थे। ये दिन भी कितने प्यारे हैं, बाबा अब भी साथ हमारे। हम ऐसी भूमि पर है जिसके कण कण में हमें प्यारे बाबा की उपस्थिति का अनुभव होता है। तो बाबा ने आपके लिए आज विशेष डिनर पार्टी रखी है। तो 7:30 बजे बाद आप सभी स्नेहपूर्वक सुखधाम भवन के लिए आमंत्रित। भ्राता जी को मैं नम्र निवेदन करती हूँ अपनी शांति।
ओम शांति। एक बार सब हमारे साथ, जैसा हम लोगों ने सुना है यज्ञ में कहा करते थे ओम शांति, वैसा ही हम सब लोग उच्चारण करेंगे। ओ शांति, ये एक ऐसा महामंत्र है जो स्वतः ही मन को कुछ समय के लिए एकाग्र कर देता है। मनोबल एक ऐसा बल है जिसे संसार का सबसे बड़ा बल माना गया है। बड़े से बड़ा बल है मनोबल, और जितना जितना हम बच्चों में यह बल बढ़ता जाता है उतना ही हम एक अभूतपूर्व शक्ति का अनुभव भी करते हैं, साथ ही साथ संकल्पों की सिद्धि का भी अनुभव करते हैं कि जो बाबा ने कहा है कि मन में संकल्प वो ही उत्पन्न होगा जो सिद्ध होने वाला होगा, दूसरे और संकल्प उठेंगे ही नहीं। तो एक ये अनुभूति होती चलेगी, और तीसरा जैसा हमने ब्रह्मा बाबा में देखा और अनुभव किया, जो भी कुछ शेयर भी करेंगे, कि बाबा जिस स्थिति में होते थे उस स्थिति का अनुभव हर बच्चे को भले कुछ समय के लिए सही, लेकिन हर बच्चा ऐसा अनुभव करता था कि मैं जैसे विदेही हो गया, अशरीरी हो गया, क्योंकि बाबा जैसा स्थिति में होते थे या हम सब भी जिस स्थिति में होते हैं वैसा ही एक ऑरा जनरेट करते हैं, लाइट का ताज, जैसे देवी देवताओं को जैसे लाइट का ताज दिखाते हैं, और वो एक ऐसा ऑरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा टाइप का, क्योंकि विज्ञान ने ऐसे यंत्र निकाल लिए हैं जो उस ऑरा को खींच भी सकते हैं उसका फोटो, और साथ में उसकी इंटेंसिटी भी जान सकते हैं, और उसके आधार पर मन में क्या संकल्प चल रहे हैं, मन में कितनी शक्ति है, उसका अनुभव कर सकते हैं। अभी लास्ट ईयर ही हम रशिया में थे, और रशिया का ही ये है, बहुत पहले किरलियन फोटोग्राफी, रशिया का ही एक साइंटिस्ट था किरलियन नाम से, उसने ऐसा कैमरा इजाद किया था, निकाला था, कि व्यक्ति का जब फोटो खींचते थे तो फोटो के साथ साथ उसका लाइट का ऑरा भी आता है, आ जाता है। तो उसने, उसे जब पता चला कि ऐसे इंडिया से आ रहे हैं, तो सेंट पीटर्सबर्ग सेकंड बिगेस्ट सिटी है रशिया का मॉस्को के बाद, वहां पर भी हमारा काफी लगभग 8-10 दिन का प्रोग्राम था, तो एक दिन उसने भी लिया हुआ था। वो सेंटर पर आए थे अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, और उंगलियों के माध्यम से, जैसे यहां ऑरा होता है ऐसे पूरे शरीर में भी ऑरा होता है लाइट, और इंस्ट्रूमेंट पर उंगली रखते रहो तो उंगली और अंगूठे के ऑरा से वो व्यक्ति की इंटरनल मेंटल पावर का पूरा वर्णन करते हैं, और उसकी रिपोर्ट भी देते हैं, करीब 70-80 पेज की रिपोर्ट होती है उसकी। तो बाबा ने भी ये कहा है कि अंत में प्रत्यक्षता भी ऐसे ही होगी। अभी तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं, लेकिन वो वैज्ञानिक जब अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ सब आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के लोगों पर प्रयोग करेंगे, चाहे स्वामी नारायण हो, चाहे इधर राधा स्वामी मत हो, कोई भी हो, हर एक पर वो प्रयोग करके, और जब वो कहेंगे सहज, और अभी भी वो बता रहे थे किरलियन फोटोग्राफी के डायरेक्टर कि हमने बहुतों के प्रयोग किए हैं, लेकिन जैसा जानकी दादी जी का या ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सीनियर भाई बहनों का जो ऑरा हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है वो किसी का भी नहीं होता है, और इसलिए वो धीरे 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 इसी निष्कर्ष पर पहुंचते जाते हैं, जा रहे हैं। और विज्ञान जो बात बोलता है उसे दुनिया वाले सहज स्वीकार कर लेते हैं। आध्यात्मिक लोग बोलते हैं स्पिरिचुअल, तो लोगों की बहुत शंकाएं रहती हैं। 2-3 साल पहले किसी ने बोला था कि मायान कल्चर का सुना होगा ना, दिसंबर की कोई तारीख भी दी थी, हाँ फलानी तारीख तक ये विनाश, 21 दिसंबर ना विनाश होगा, नहीं हुआ। तो लोगों की आस्था जो है धार्मिक क्षेत्र से कम होती जा रही है। और दूसरी बात, धार्मिक क्षेत्र के कुछ लोगों के चरित्र भी अथवा कोई ऐसी बातें होती है उनका जीवन, उससे भी लोगों की आस्थाएं कम हो जाती हैं। लेकिन वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा जो नापा जा करके वो प्रत्यक्ष करेंगे, वो ही अल्टीमेटली प्रत्यक्षता होगी, वही बाबा की प्रत्यक्षता होगी, वही बाबा के बच्चों की प्रत्यक्षता होगी। और वो यही चीज है मनोबल, आत्मा का और मंशा सेवा। तो इसीलिए अपना हर स्थिति में मनोबल बढ़ता रहे, इस ज्ञान मार्ग में हमें सदा ये चेक करना है। और साथ ही साथ इसीलिए भक्ति मार्ग में भी कहा है, क्या मन के ही लिए सब कुछ कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। मन चंगा तो कठौती में गंगा। और गीता में भी इसीलिए कहा है, मन मना भाव, तन मना भाव या धन मना भाव या संबंध मना भाव नहीं, मन मना भाव। और इसीलिए मन के लिए भी भक्ति मार्ग में कहते आए हैं, बहुत चंचल है मन, बड़ा मुश्किल है कंट्रोल में करना आदि आदि। लेकिन बाबा ने हमें बताया है मन को कंट्रोल करना तो बहुत सहज है। छोटा बच्चा जैसे होता है ना, मन जो है बच्चे की तरह है, बस अगर वो खेल रहा है किसी खिलौने से आप ले लेंगे रोने लगेगा, लेकिन उसको रिप्लेस कर देंगे दूसरा दे देंगे वो खेलता रहेगा। तो इस रीति से हमें ये चेक करते चलना है कि मन हमारा आगे की तरफ ऐसा बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि गायन ही है। कौन सा गायन है? हमारे गायन मार्ग का और भक्ति में भी है, अंतमते सोगति। हम सभी का पुरुषार्थ उस एक अंतिम क्षण के लिए हो रहा है, चाहे कोई 75 साल से चल रहा है, 60, 70, 50, चाहे 10 साल, चाहे 1-2 साल से, कि जब हमारे प्राण इस तन से निकले तो उस समय हमारे मन में और कोई इधर उधर के विचार न हो, मन बस एक बाबा की तरफ लगा रहेगा, तभी अंतमते सोगति। और इसीलिए हम सबको एक तो ये देखना है कि अपने मन को भी ऐसा रखें, और इसीलिए कहा गया है मन जीते जगत जीत। और जगत में क्या आ जाती है? सब चीज आ जाती है, यहाँ तक कि प्रकृति के 5 तत्व तो भी आ जाते हैं। इसीलिए ये भी गायन है शास्त्रों में भी, कि जब कोई महाराजा, विश्व महाराजा चाहता था बनना, यानी चक्रवर्ती महाराजा बनना चाहता था, क्या करता था? अश्वमेघ यज्ञ। तो बाबा ने भी ये यज्ञ रचा है ना हमारा, इसका भी नाम क्या है? पूरा लंबा चौड़ा नाम है ना, उसी के अंदर ही पूरा भाव, राजस्व अश्वमेघ रुद्र अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ, ऐसा कुछ है। और भी कुछ रह गया हो तो बोलो। हाँ, लेकिन अश्वमेघ क्यों बोला है इसे? इसीलिए सब जानते हैं, राजा रामचंद्र जी भी जब उन्होंने चक्रवर्ती महाराजा होना चाहते थे तो अश्वमेघ यज्ञ रचा। उसमें क्या करते थे? घोड़ा यज्ञ रचते थे, और यज्ञ में सब प्रक्रिया करने के बाद घोड़ा छोड़ देते थे, घोड़े के गले में तख्ती लगी होती थी क्या कि ये घोड़ा फलाने महाराजा ने छोड़ा है, जो उनकी अधीनता स्वीकार करता है वो इस घोड़े को रास्ता दे दे जाने दे, और जो नहीं स्वीकार करता वो युद्ध करे, और उस घोड़े के पीछे पीछे सेना चलती रहती थी। ये सब हमारे लोगों की ही यादगार है कि कैसे बाबा ने ये जो अश्वमेघ यज्ञ रचा है, हम सब के ये मन रूपी घोड़ा, जैसे ये अश्वमेघ यज्ञ में इसमें ये चल रहा है, हमारे पीछे पीछे जो हमारी सपोर्टिंग सेना है वो कौन सी है, दिव्य गुण, दिव्य शक्तियां, ये सारे के सारे ये हमारी सपोर्टिंग सेना है। और जो माया की सेना है, कई बार वो इस मन रूपी घोड़े वो पकड़ती ही मन को है, और देखने में भले किसी का रूप माया का, विघ्नों का, बाहर का हो, लेकिन मन में सबसे पहले किसी भी चीज का जन्म होता है, चाहे विकार हो, विघ्न हो, माया हो या महानता हो, जन्म मन में होता है, उसके बाद स्वरूप देखने में बाहर का आता है। तो इसीलिए वो बाहर की माया भी कई बार इस मन को वश में करने का प्रयत्न करती है। दोनों सेनाओं में युद्ध होता है, माया की सेना अगर जीत जाती है, वो जीती होती तो यहाँ नहीं बैठे होते। जो यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब हम सब उस सामने वाली सेना को हरा करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और अश्वमेघ यज्ञ में अब अंतिम आहुति की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए ये अश्वमेघ यज्ञ यानी ये मनसा शक्ति का ये जो यज्ञ है, इसको हम कैसे सफल बनाएं, इसका हमारे साथ सामने, सबके सामने अभी तक कौन उदाहरण है? एक ही आत्मा जो संपूर्ण बनी है वो है ब्रह्मा बाबा। तो इस कारण से बस उनके अगर उस पर चलते रहेंगे तो आगे सदा बढ़ते ही रहेंगे। आजकल हरेक का हेल्थ के प्रति काफी कॉन्शियस, आज की मुरली ही जैसे थी। आज की मुरली की मुख्य धारणा क्या थी जो अंत में आती है, क्या था? ज्ञान को अंदर में क्या करना है, घोटना है, विचार सागर मंथन करना है। तो मनोबल बढ़ाने का एक सबसे बड़ा साधन है ये विचार सागर मंथन। ज्ञान हमने सुन लिया और सुनने के बाद अच्छा भी लगता है बहुत, लेकिन अगर उसे मंथन नहीं करा तो वो हमारी चीज नहीं बनी। वो बस जैसे बैंक के कैशियर की तरह हुआ, बैंक का कैशियर रोज लाखों रुपए गिनेगा, तो उससे उसे खुशी नहीं होगी। वो गिनता है, समझता है बैंक की प्रॉपर्टी है, लेकिन जब एक तारीख को या जब उसे सैलरी मिलती है, भले बहुत कम होगी उसकी तुलना में जो वो रोज लाखों करोड़ों गिनता है, लेकिन वो उसकी अपनी चीज है, अपना अधिकार है, इसलिए उस पर खुशी होती है। ऐसे जब विचार सागर मंथन करेंगे किन्हीं पॉइंट पर, देखो विचार, मन में विचार उठते हैं ना, मनोबल, तो विचार इसी का ही करें मंथन। तो ये क्या बताता है, विचार, वी वी चार बार, इसमें वी ये चिन्ह किस चीज का है, पॉलिटिशियन भी दिखाते हैं ना, विक्ट्री, विजय का सूचक। तो मन में जो भी विचार होना वो सदा विक्ट्री के हो, इसीलिए मन के हारे हार है मन के विक्ट्री, मैं विजयी आत्मा हूं। मन एक तो ये मन है जो हम संकल्प करते हैं, ये कॉन्शियस माइंड है, ये लगभग 10% जितना ही होता है, लेकिन 90% हमारा सब कॉन्शियस माइंड होता है, अर्धचेतन मन, अचेतन मन बहुत बहुत शक्तिशाली होता है। उसने जो सोच लिया उसके वो 100% सिद्ध हुआ होता है। इस मन में तो कई बार आएंगे ये पता नहीं ऐसा होगा नहीं होगा क्या होगा, लेकिन अर्धचेतन अचेतन मन के अंदर हम जो भी चीज डाल देते हैं वो सिद्ध हुआ पड़ा। इसीलिए बाबा हमें बार बार कहता है रोज अपना समान याद रख के मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं माला का मणका हूँ। बाबा आपने मुझे माला का मणका बनाया था, अभी भी आप बना रहे हो, कलप पहले भी बनाया था, कलप कलप आप बनाते रहोगे और हम बनते रहेंगे। ये नहीं मन में ये नहीं आए कि ये तो बड़े बड़े महारथी हैं, दादियां हैं, पुराने दादा है, वो बनेंगे, मैं कैसे बनूंगा, मैं तो घर गृहस्थी में रहने। जैसे ही मन में अगर ये आया तो मन का सबकॉन्शियस माइंड जो पार्ट है वो इसे स्वीकार नहीं करेगा और मन कमजोर हो जाएगा। इसी को ही हम वृत्ति भी कह देते हैं। मन से भी सूक्ष्म जो है वृत्ति हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए कि हाँ मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ। इसीलिए बार 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 उसे हम वो रिपीट करें। ब्रह्मा बाबा ने भी जब ये रियलाइज किया ना, जब ज्ञान में आए 1936-37 में, बाबा की पुरानी चीजें पहले तो सबको बहुत दिखाते थे, जब हम लोग ज्ञान में आए 1961-62 में, तो बाबा खुद भी थे, बाबा के हाथ के लिए लिखे लेटर डायरी वो सब थे। तो बाबा ने क्या किया, बाबा ने जब ये अनुभव किया 36-37 में, मन तो बड़ा चंचल है, भाग जाता है, बैठते हैं बाबा को याद करते हैं भाग जाते हैं, तो बाबा ने क्या युक्ति रची है? बाबा ने मन को लेटर लिखा, छोटा इतना बड़ा लेटर था, वो हम सब लोगों को उसकी कॉपी दी गई थी। बाबा ने तो सिंधी में लिखा था लेकिन उसकी हिंदी करके हम लोगों को दी गई थी, उसकी चंद लाइन मैं सुनाता हूँ। बाबा ने क्या लिखा मन को लेटर कि हे मन, मैं आत्मा राजा हूँ, तू मेरा मंत्री है, तुझे मेरे वश में होना चाहिए क्योंकि मैं राजा हूँ, लेकिन तूने मुझ आत्मा राजा को इतना कमजोर कर दिया और तू शक्तिशाली हो गया कि तू जिधर जिधर भागता रहा मैं आत्मा राजा होते भी तेरे पीछे पीछे भागती रही मंत्री के पीछे, और वास्तविक सत्ता तेरे हाथ में आ गई। मैं कमजोर हो गया, तू शक्तिशाली हो गया, लेकिन हे मन अब मैं तुझे कह देता हूं कि अब मैं आत्मा राजा अपने को पहचान गया हूं, अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया हूं, अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा क्योंकि मैं राजा हूं, तू मंत्री है, तुझे मेरे कहने पर चलना है। मैं तुझे ऑर्डर करता हूं कि तू मेरे कहे बिगर नहीं जाएगा। बाबा ने मन को ऑर्डर किया, लिखा ये पत्र, और मैं आत्मा अब अपनी राजा की स्थिति में स्थित हो गया हूं। इसी तरह बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा, हे बुद्धि तू भी मन के कहने पर, मन का साथ देकर, मन के साथ साथ चलती रही और तुम दोनों ने मिलकर मुझे बहुत कमजोर कर दिया। मैं राजा होते भी कमजोर, लेकिन अब मैं तुझे भी कह देता हूं कि हे बुद्धि अब तुझे मेरे आत्मा मुझ आत्मा राजा के कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तुम्हारे कहने पर नहीं चलूंगा क्योंकि मैं राजा हूं, तुम मेरे मंत्री हो, मन मंत्री है, बुद्धि सेनापति और संस्कार सैनिक है, अब तुम्हें मेरे कहने पर चलना है। तो बाबा ने ये ऑर्डर किया, उसके बाद से बाबा ने ये अनुभव किया कि मन कभी भागा नहीं, भागा भी अगर तो पुनः अपने स्थिति में आ गया। हम सब भी यही अनुभव करते हैं ना, क्या करें, योग में बैठते हैं, बाहर से आए, लाल लाइट भी जल गया, गीत भी अच्छे हो गए, बहने भी संगली पर बैठ गए, दृष्टि दे रहे हैं सब, फिर भी मन सारे दिन की जो दिनचर्या रही है उसमें भाग जाएगा, जो जिधर हमारा आकर्षण है मन का उधर भाग जाएगा, ऐसे करके मन भाग जाता है। और उसका भी कारण बाबा ने बताया क्यों भाग जाता है। हम मन को वशीभूत तो करना चाहते हैं लेकिन अपने सोमान की सीट पर बैठे बिना हम उसे वशीभूत करना चाहते हैं। हम सोमान की सीट पर नहीं बैठते। जैसे कोई अभी ही इलेक्शन हुए प्रधानमंत्री, अभी मनमोहन सिंह थे, अभी मोदी होंगे, तो जब तक कोई व्यक्ति सीट पर होता है उसका कहना सब मानते हैं, उसका राज्य चलता है। चाहे गवर्नमेंट ऑफिसर भी बड़ा हो, मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री, कोई भी हो, लेकिन सीट पर सेट होना ये कंपलसरी क्वालिफिकेशन है। और जब सीट पर नहीं रहता, इलेक्शन में हार गया, ट्रांसफर हो गई, कहीं दूसरी जगह पोस्टिंग हो गई, तो फिर दूसरी जगह वाले उसके ऑर्डर नहीं मानेंगे। तो ऐसे ही हम चाहते तो हैं मन को वशीभूत करना, लेकिन सोमान की सीट पर स्थित हुए बिना हम मन को जब चाहते हैं करना तो मन भी हमारी बात नहीं मानता, क्योंकि हम सीट पर ही नहीं है। हम अधिकार, उसके अधिकार क्षेत्र, हमारे अधिकार क्षेत्र में ही वो नहीं है। बाहर भाग जाता है तो एक आदमी दूसरे ऑफिसर का ऑर्डर कैसे मानेगा जो उसका बॉस ही नहीं है। तो इसीलिए हम जब चाहते हैं शक्तियों का संचय करना, बाबा ने बताया है शक्तियों का स्टॉक जमा करो, और उसमें सबसे बड़ी शक्ति यही है, खजाना भी बाबा ने यही बताया ना, सबसे बड़े दो खजाने कौन से हैं? समय और संकल्प रूपी, संकल्प यानी यही मंशा। तो इसलिए इस खजाने का स्टॉक जमा करें, जितना स्टॉक जमा होगा उतना क्या होगा, समय पर अगर कोई व्यर्थ हुआ उसे हम स्टॉप कर सकेंगे, स्टॉक जितना होगा उसको हम स्टॉप कर सकेंगे। इसीलिए ये कोई भी स्टॉक होता है, मानो पैसा है, बैंक में पड़ा है, तो जब भी आवश्यकता हो, कोई घर में शादी ब्याह हो, कोई मकान बनाना हो, कोई लड़के का इंजीनियरिंग मेडिकल एडमिशन, कुछ भी हो, पैसा विड्रॉ करके वो कर लेंगे, काम हो जाएगा। लेकिन अगर स्टॉक ही नहीं होगा, पैसा ही नहीं होगा, तो परिस्थिति के वशीभूत हो जाएंगे। इसी कारण से बाबा ने कहा है शक्तियों का स्टॉक जमा करते रहो। तो मनोबल कैसे कैसे अब जमा करें वो सब देखते चलते हैं। तो ये तो हम सब जानते हैं कि यहाँ भी कैट का प्रोग्राम चलता है, हार्ट की कोई तकलीफ होती है, कई बार हार्ट की नली के अंदर ब्लड क्लॉटिंग हो गई, क्लोरेस्ट्रॉल की क्लॉटिंग, सर्कुलेशन रुक गया, हार्ट अटैक आ जाता है, एंजाइना पेन हो जाता है। तो वो क्लॉटिंग के बचने के लिए या नॉर्मल स्थिति लाने के लिए क्लॉट को निकालना पड़ता है। तो हार्ट का क्लॉटिंग की तो बात हम जानते हैं, लेकिन उससे ज्यादा सीरियस है मन की क्लॉटिंग। मन के अंदर कोई विचार अगर घुस गया और हमारे चाहने पर भी अगर नहीं निकल रहा है, कोई पुरानी बात, पुराना के वो, तो ये है मन की क्लॉटिंग, विचारों की क्लॉटिंग, और इसी को कहते हैं पास्ट। जो है ना, कई बार पास्ट की बातें हम भूल नहीं पाते, और जब पास्ट की बात नहीं भूल पाते हैं तो आप सब लोगों ने देखा होगा ना, वहीं पर बस गाड़ी अटक जाती है। पुराने जमाने में आप लोग काफी पुराने भी बैठे हैं, आजकल तो सीडी प्लेयर और ये सब होता है, और पहले जमाने में ग्रामोफोन होता था, वो रिकॉर्ड चलता था, ऊपर साउंड बॉक्स हुई रख देते थे और साउंड आती थी। कभी अगर रिकॉर्ड पुराना हो जाता था तो क्या हो जाता था, सुई अटक जाती थी और बार 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 वही आवाज आती थी। तो वैसे चाहे बहुत बढ़िया रिकॉर्ड हो, कोई चाहे लता मंगेशकर की आवाज हो, चाहे कोई हमारे प्रिय करण प्रिय आवाज हो, लेकिन अगर वो अटक गया, वही आवाज इरिटेटिंग लगती थी, अच्छी नहीं लगती थी, भले गायक वही है लेकिन वही अटक गया। बस वो ऐसा पुराना ग्रामोफोन का रिकॉर्ड वगैरह जिसने देखा है हाथ खड़ा करे, काफी उन्हें देखा हुआ है, पुराना इज मास्टर्स वॉइस, पुराना होता था। तो हम सब का भी मास्टर ये मन है, मन की आवाज का ना, वही जहाँ वो समय कोई परिस्थिति, वही परिस्थिति है। मानो किसी को देख के हमारे मन में ना घृणा की भाव है, बदले की भावना है। उसने हमारे साथ बहुत अपमानजनक व्यवहार किया है, हमारा हमेशा नुकसान चाहा है, ऐसी ऐसी बातें हुई हैं। तो भले हमारी बुद्धि में ज्ञान है, लेकिन जैसे जब भी उसको देखते हैं, बस सुई वही पुरानी बात में अटक गई, वही पुरानी बात याद आती रहेगी और वो ये विचारों की क्लॉटिंग हो गई। हार्ट की क्लॉटिंग में हार्ट अटैक होता है, ये मन का अटैक जो है ना, ये हार्ट अटैक से भी ज्यादा सीरियस है। इसीलिए इसमें क्या करें, हम चाहते हैं न भी हो, और वो बहुत हमारे जो होके गए हैं उन्होंने इस बात को काफी बोला है। चक्की होती थी पुराने जमाने में ना, तो कबीर दास जी भी बोल के गए ना, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। कौन से ये दो पाट हैं? एक है पास्ट, एक है फ्यूचर। इन दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, और खूंट पकड़कर जो रहा उसे पीस सका ना कोई। चक्की होती थी ना, बीच में अनाज डालो चारों तरफ से तो पीस करके निकल जाएगा, वहां थोड़ा साबुत मोटा दाना रह जाता था। तो वो है प्रेजेंट टेंस। तो यदि हम वर्तमान में जीना जानते हैं ना, तो हमारा मनोबल का स्टॉक सदा बढ़ता जाएगा। या तो पास्ट की वजह से वो लीक आउट होता है, पास्ट की बातें याद आती हैं, या फ्यूचर का चिंता, पास्ट का चिंतन या फ्यूचर की चिंता, क्या होगा, बच्ची की शादी बाकी है, बच्चे को सेट करना है, मकान बनाना है, वो चिंता। तो इन दो पार्टों के बीच में तो पिस जाएंगे परिस्थितियों में, लेकिन वर्तमान में अगर जीना जानते हैं, जिसे प्रेजेंट कहा गया है, गिफ्ट, प्रेजेंट माने गिफ्ट, बर्थडे पार्टी मैरिज पार्टी में जाते हैं तो गिफ्ट ले जाते हैं ना, तो इसीलिए सदा वर्तमान में जिए। एक तो हमारा ये हम देखते चले, बाबा का यही होता था। ब्रह्मा बाबा को देखते थे, बड़ी से बड़ी घटना, बाबा के साथ रहने का हमें 6-7 साल मौका मिला और देखा। पहले बाबा बच्चों से जब मिलते थे काफी समय देते थे, बच्चे बताते थे बाबा ये समस्या है या ये सेवा है अथवा ये स्वचिंतन की बात है, बाबा सुनते थे और समाधान देते थे। ये हम 61-62 की बात कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे समय गुजरता जाता था, तो 65-66 में हमने क्या देखा, 66-67 में, और बाबा के पास जाते थे, बस एक दो लाइन बोली, बाबा कहता था हाँ बच्चे बाबा समझ गया। बाबा अभी तो हमने बोलना शुरू ही किया, पूरी समस्या का वर्णन भी नहीं करा, बाबा कहते थे नहीं समझ गया, बच्चे ऐसा ये बोलना है ना, अच्छा ऐसा कर लो, समाधान दे देता था, यानी कुछ लाइनें सुन के। लेकिन जैसा बहन जी बता रहे थे, हमें ये सौभाग्य मिला अंतिम दो दिन 17 और 18 जनवरी को पूरा समय बाबा के साथ साथ यहाँ थे। वो भी एक कहानी है किस प्रकार से आ गए, बहुत दूर आसाम में इंजीनियरिंग पास करने के बाद आसाम में पोस्टेड थे, लेकिन बाबा ने कैसे बुला लिया और अंतिम दो दिन बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला। तो ये देखा हमने कि चूंकि हम ही यहाँ पर थे, हम और हमारे लौकिक पिताजी, बाहर की पार्टियां नहीं थी, बाबा से दो दिन में 7 बार मिलना हुआ। बाबा से बहुत बीच में बहुत ऐसा बात होती थी बस, लेकिन मन में अगर कोई बात लेके जाते थे बाबा से ये पूछेंगे, बाबा जस्ट दृष्टि दी, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। ये है मनोबल की पराकाष्ठा, कि दूसरे को एक अक्षर भी बोलने की जरूरत ना पड़े, हम दूसरे के मन का भाव जान करके उसके मन में जो भाव है उसका समाधान कर सके, अगर कोई समस्या है उसकी आश को पूरी कर सके, ये है मनोबल की। और ये एक बार दो बार नहीं, 6-7 बार ये अनुभव किया कि बिना एक अक्षर बोले भी बाबा ने, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, ऐसा कर लो, ऐसा हो जाए। तो हम भी अपने को एक तो ये चेक करते चले कि कोई भी पास्ट की व्यक्ति वस्तु परिस्थिति कोई भी बात हमें उस पास्ट की घटना के कारण अटका न दे, दूसरा हम हमारे इसी इच्छा मात्र अविद्या हो जाए कि किसी के भी मन के भाव को परख सके। तो ये है हमारे अपने मनोबल की परीक्षा। अगर हम अपनी परीक्षा खुद लेते नहीं चलेंगे, ऑडिट अपना नहीं करेंगे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कितना आगे बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। हम चल तो रहे हैं ज्ञान में, लेकिन दशा हमारी, दिशा कैसी है और स्पीड, अगर हमारी डायरेक्शन ठीक है और स्पीड ठीक है तो ही हम समय पर मंजिल पर पहुंच सकेंगे। लेकिन अगर दिशा ठीक नहीं है या स्पीड ठीक नहीं है तो समय पर मंजिल पर कभी नहीं पहुंच सकेंगे। इसीलिए ये देखने के लिए जरूरी है बीच बीच में हम अपना अंतर्मुखी होके, एकांत मुख होके ऑडिट करें, कितना मैंने कमाई की, कितना मेरी झोली में छेद था वो बह गया, कितना अल्टीमेटली स्टॉक जमा हुआ। ऐसा तो ये उसका साधन होना चाहिए। मानो मेरी तबीयत खराब है, बुखार है, साधन है, थर्मोमीटर देख लिया, बुखार है, साधन है, पता चल गया, दवाई ले लेंगे ठीक हो जाएंगे। शरीर अस्वस्थ है, ब्लड प्रेशर से मेजर कर लिया, पता चल गया हाई है या लो है। तो ऐसे हमारे मेजरमेंट होने चाहिए जो हमें बताए कि हाँ वाकई मेरा स्टॉक जमा हो रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इतना मेरा शक्तियों का स्टॉक आदि आदि जो बातें बाबा ने बताई हैं, ये मेरे कर्मचारी मेरे वश में हैं कि नहीं है, हर एक चीज का बाबा ने पूरा ज्ञान दिया। यहाँ तो समय के अभाव में सिर्फ एक दो कुछ मोटी मोटी बातें आपको बताएंगे। तो एक ये चेक करते चले, क्योंकि अंत समय में क्या होगा कि बहुत आएंगी। बाबा में जो देखा, तो बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा देखते थे, पहले तो बाबा से जब भी मिलते थे ना, बस बाबा ऐसे हाथ, आओ बच्चे, आओ आओ मीठे बच्चे, बाहर जो चित्र लगा है ना गेट के सामने आपने देखा है, एक्चुअली बाबा का ऐसा पोज, आओ बच्चे, और बस बाबा की भाव में मैग्नेटिक पुल ऐसा होता था, खिंचके चले आते थे। फिर क्या होता था, उसी क्षण विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे। क्यों? क्योंकि बाबा ने अशरीरीपन का इतना अभ्यास किया हुआ था, विदेहीपन का, हम सब ने पढ़ा है आत्मा का, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है नारायण, लिख लिख के पक्का किया था। तो बाबा जिसको भी दृष्टि देता था वो विदेही। तो मैं भी ये चेक करते चलूं, हर जगह जिन आत्माओं को मैं दृष्टि देता हूँ, जिनके संपर्क में आता हूँ, क्या वो आत्माएं भी विदेही अशरीरी हो जाती है? फिर बाबा क्या करते थे, बाबा तो बाबा था, फिर उसके बाद बाबा ऐसे थपथपाते थे, आओ बच्चे आओ, कोई आत्मा जाती नहीं थी, लेकिन इतनी विदेही हो जाती थी, सब देह भान भूल जाता था। फिर बाबा देह में लाके तोली खिलाता था, नाम हालचाल पूछता था, कोई बात होती थी वो, फिर एक जाता था, दूसरा आता था, तीसरा, ऐसे एक एक पार्टी मिला करती थी। और अंतिम एक दो वर्ष में बाबा मिलते नहीं थे ऐसे ज्यादा, डॉक्टरों ने बोला था इतने लोग आते हैं उनका इन्फेक्शन लगने की ज्यादा, तो बस बाबा दूर से, जरा सा दूर से ही दृष्टि दी, एकदम अशरीरी हो जाते थे। फिर बाबा ऐसे टोली मुंह में तो खिलाते थे और हालचाल पूछते थे। तो ये बाप समान हमें भी कर्मातीत अव्यक्त फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करना है, तो ये भी हम चेक करते चले, क्या मेरा भी ऐसा हो रहा है कि मैं अपने मनोबल को ट्रांसफर दूसरे में कर सकता हूँ, अपने दृष्टि के द्वारा, अपने ऑरा के द्वारा। क्योंकि अंत में आत्मा इतनी कमजोर आएंगी कि उनमें इच्छा होगी मैं ज्ञान में चलूं, पवित्र रहूं, लेकिन शक्ति नहीं होगी, पवित्र नहीं रह सकेंगे, ज्ञान में चलने का, शुद्ध खान पान का, ये सब चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें उन्हें ये बल और ये शक्ति देनी पड़ेगी, और ये बाबा से अनुभव होता था। और इसीलिए बाबा ने कहा है, ऐसा आपका वो हो कि रोती हुई आत्मा आए, आपका नैन मुलाकात करे, दृष्टि ले, आपके ऑरा के संपर्क में आए, हंसती हुई चली जाए, अशांत आत्मा आए, शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए, दुखी आत्मा आए, सुख की अनुभूति करती हुई चली जाए। इतना एकदम वो कब होगा, कब होगा? ये गुण किस में होता है, रूप परिवर्तन करने का? अग्नि में गुण होता है, अग्नि में कोई चीज डालो रूप परिवर्तित हो जाता है। ऐसी हमारी भी बाबा ने इस कई वर्षों से बोला है, ज्वालामुखी ऐसा योग होगा तो ये मनोबल हमारा ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। और इसका प्रयोग करके देखें, योग का प्रयोग हम रोज करें, सबके ऐसा करें, चार प्रकार के प्रयोग हो सकते हैं बड़ा सहज। एक होता है योग का प्रयोग अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर, स्वयं के कोई बीमारी है उसके ऊपर प्रयोग करें, स्वयं के संस्कार है उनके ऊपर अनुभव करें, जैसे बाबा से शक्ति का फ्लो हो रहा है और मेरे अंदर से ये पुराना संस्कार अग्नि के रूप में जैसे जा रहा है, इस अग्नि से भाप बन के उड़ रहा है धुएं के, ऐसा अपने ऊपर, दूसरे व्यक्तियों के ऊपर योग का प्रयोग। ये मनसा सेवा भी है ना, कैसे करेंगे मनसा सेवा? बाबा ने बताया और सब आप सब जानते हैं, बहुत बार बाबा ने मुरली में बोला है कैसे सृष्टि को सकार दें, फिर भी हम सब की भावना होती है किन्हीं व्यक्ति विशेष के प्रति, हमारा ये फलाना संबंधी ज्ञान में आ जाए, पति आ जाए, बच्चा आ जाए, आदि आदि, उनके प्रति विशेष, क्योंकि हमने जो प्राप्ति की है वो भी वो प्राप्ति करें। तो उसकी विधि सहज क्या है, जो बाबा ने कहा है अमृत वेले ना, सबसे पहले हम अपने को बस योग में बैठे और अपना अनुभव करें, मेरा सूक्ष्म शरीर निकला और निकल के सूक्ष्म वतन में मेरा सूक्ष्म शरीर पहुंच गया, फिर वहां मैं बाबा बाप दादा वहां पर हैं, शिव बाबा ब्रह्मा तन में सूक्ष्म शरीर में, और बाबा से मैं आत्मा शक्ति ले रही हूँ सूक्ष्म। फिर सेकंड स्टेज में ये अनुभव करें, जिस व्यक्ति विशेष आत्मा को, वैसे तो बाबा ने कहा सृष्टि की समस्त आत्माओं पर हमारी मेहर होनी चाहिए, समान समझना चाहिए, फिर भी सृष्टि की आत्माओं को और सबको बल देते हुए व्यक्ति विशेष जिसकी हमारी चाहना है, उस आत्मा का भी सूक्ष्म शरीर हम सूक्ष्म वतन में एमर्ज करें। और ये अमृत वेले चूंकि वो आत्मा आराम में होगी या वो तो डिस्टर्ब, उसके अपने संकल्प नहीं होंगे, तो जैसे वो आत्मा लेटी हुई है सोई हुई है और उसका सूक्ष्म शरीर भी हम वतन में एमर्ज कर रहे हैं, वो सामने है, मैं आत्मा बैठी हुई हूँ, मेरे बगल में बाबा बैठे हैं, बाप दादा, बाबा का भी उस आत्मा के अंदर सकाश जा रही है, बाबा की सकाश मुझे मिल रही है और मैं उस आत्मा को अपने विचारों का सकाश दे रहा हूँ, मानो हम चाहते हैं वो ज्ञान में आए, तो हम यही शुभ भावना है, आत्मा अब आपका समय आ गया है, आप जागो, आओ बाबा के ज्ञान में पहचानो, अपना जन्म से अधिकार लो, आदि आदि। तो उस ये जब हम संकल्प, अपने संकल्प हम उसे सूक्ष्म वतन में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो थोड़े समय बाद हम आत्मा भी सूक्ष्म शरीर हमारे स्थूल शरीर में जब आएगा हम कार्य व्यवहार में, और उसका सूक्ष्म शरीर भी जब उसके स्थूल शरीर में मिलेगा तो उस आत्मा को यही अनुभव होगा, ये मेरे अपने विचार, व्यक्ति दूसरे के विचारों को उतना महत्व नहीं देता, अगर अपने मन में विचार अपने होते हैं उसके मन में आएगा, चलो मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाऊं, मैं ये करूं ऐसा करूं, इनको सहयोग दूं, आदि आदि। तो ये मनसा सेवा की एक ऐसी विधि है जो लगातार अगर हम करते हैं, और देखा गया है अगर हम लगभग 3 सप्ताह तक एक व्यक्ति विशेष को और एक स्थान पर बैठ के योग ऐसा करते हैं सकाश का, श्योरली उस आत्मा में परिवर्तन एकदम देखने में आता है। तो ये एक बात हुई मनसा सेवा की, और मनोबल की मुख्य बात इसलिए ये हमारे लिए भी जरूरत है और दूसरे लिए भी, इसीलिए बाबा कहता है, कई बार कहता है बुद्धि में ज्ञान टपकना चाहिए। टपकने का भाव क्या है, वैसे भी जब कोई बीमार ज्यादा होता है ना तो क्या करते हैं उसको ड्रिप लगा देते हैं, एक एक बूंद बूंद टपकती रहती है, उसमें शक्ति आ जाती है ग्लूकोज वगैरह आदि की, ऐसे ही बुद्धि में ज्ञान टपकता रहे। हमने ये देखा है कि ये जब बाबा से पहले हम लोग मिला करते थे, जैसे आपको बताया मन में मनसा संकल्प भी बाबा का इतना स्ट्रांग हो गया था, इच्छा मात्रम अविद्या, कि अपने मन में एक भी संकल्प नहीं होता था, इसलिए दूसरे के संकल्पों को पढ़ के समाधान दे दिया करते थे। जैसे जल होता है, कंकड़ी डालो लहरें होंगी, हम अपनी छवि नहीं देख सकते, लेकिन अगर जल स्थिर होगा साफ होगा अपनी या दूसरे की छवि साफ दिख सकती है। ऐसे ही अपने अंदर भी जितना जितना हम इच्छा मात्रम अविद्या होते जाएंगे। तो ये एक हमें और देखते चलना है बाबा की तरह, बाबा की बात सुना के ये पूरा करते हैं कि बाबा का। हाँ, 18 जनवरी को हम बाबा के सम्मुख बैठे थे, वो हिस्ट्री हॉल में ही क्लास हो रहा था। बाबा को कई बार खांसी बहुत आती थी, कभी उस दिन तो नहीं आई एक बार भी, लेकिन ठंडी की मौसम थी, 93 इयर्स एज थी। लेकिन बाबा की स्वस्थिति, मंशा, मनोबल इतना पावरफुल था कि एक कुछ सेकंड में ही परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेता था। मानो खांसी आ रही है बाबा को, हंसी में कई बार बाबा बोल देते थे, ये खांसी कौन है? हा? मेरी सखी है। मैं बाबा को बोलता हूँ, बाबा इस खांसी को मेरे स्तन का आधार लिया है, थोड़ी तो मेरी मदद करो। तो शिव बाबा क्या बोलता था? ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है, तुम्हें चुकतू करना है, इसमें बाबा कुछ नहीं कर सकता, जिसका जो हिसाब किताब है। लेकिन बाबा कैसे करता था? बस कुछ खांसी आ रहा है, दिख रहा है, आंख भी गीली हो गई बाबा की, और तकलीफ जैसी लगता था, होती नहीं थी, लेकिन तुरंत ही बाबा साइड में लक्ष्मी नारायण का, कृष्ण का ट्रांसलेट का चित्र होता था। बाबा कहते, देखो बच्चे, अभी ये पुराना शरीर है, खांसी आ रही है, कल बाबा जाके ऐसा बनेगा विष्णु कृष्ण, कोई भी तकलीफ नहीं होगी, प्रकृति की, शरीर की, आत्मा सब कैसी दुनिया होगी। और ये कहते कहते ही बाबा का स्वरूप ही एकदम बदल जाता था, खांसी कहाँ गायब हो गई पता ही नहीं चलता था। ये है स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति पर विजय। इतना मनोबल, इतनी शक्ति, स्वस्थिति हमारी शक्तिशाली हो जाए कि किसी भी परिस्थिति को हम बदल सके। ये प्रत्यक्ष देखने में आता था। फिर बाबा बच्चों से पूछता था कई बार, बच्चे इतनी खुशी हो जो गम को खा जाए, हा? खुशी में क्या करना चाहिए? हाँ, वो तो मालूम ही है ना, कैसे खग्गी मारते हैं, बताओ जरा सब करके। हाँ, इसमें चैतन्य, बाबा के चेहरे पर ऐसी खुशी आ जाती थी कि बस। तो ये है खुशी को भी ट्रांसफर करना हर चीज को। 18 जनवरी को बाबा मुरली चला रहे थे, हम सम्मुख बैठे थे, थोड़े ही लोग थे, 20-25 लोग हिस्ट्री हॉल में। वहाँ तीन संदलियां ऐसे पड़ी रहती थी, एक में बाबा होते थे, एक में मामा, बीच वाली संदली पर भाई लोग जो भी पार्टी आते थे वो पहले अपना अनुभव सुनाते थे, और जब जाने से एक दिन पहले हम क्या लेकर के जा रहे हैं वो, और क्या करेंगे पुरुषार्थ, वो सुनाते थे। तो बाबा 18 जनवरी को हमेशा तो मुरली चलती थी 8:45-9 बजे, लेकिन उस दिन बाबा ने 7 बजे ही जमुना प्रसाद भाई को बुला के बोला, आज बाबा पहले क्लास कराएगा, सबको बोलो भोजन करके आ जाए। उन्होंने घंटा बजाया, वहां पर रखा रहता था, तब माइक तो सिस्टम होता नहीं था, तो घंटा बजा के सब इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा, बाबा आज जल्दी क्लास कराएंगे, और सब लोग 7:30-8 तक पहुंच गए। इसके बाद बाबा आए, बाबा ने क्लास कराई, लेकिन वो तो बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अवस्था थी। बाबा को उस दिन एक बार भी न खांसी आई, न गला साफ करने की जरूरत पड़ी। वो मुरली सुन सकते हैं, वो भी यहाँ पर ओम शांति भवन के नीचे जो ऑडियो विजुअल है वहां पर उसकी सीडी 18 जनवरी अंतिम मुरली बाबा की मिलती है। तो एक बार भी नहीं, जो इस बात का प्रतीक है कि जब हमारी भी कर्मातीत अवस्था इतनी होगी, इतना श्रेष्ठ मनोबल, तो कर्म भोग के ऊपर हमारा योग बल, हमारा मनोबल पूरा विजय प्राप्त कर लेगा। और एक कोई भी वो योग बल के कारण हमारा कर्म भोग हमें परेशान नहीं करेगा, तभी तो अंतमते सोगते होगा। अगर मानो हम यहाँ बैठे भी हैं, एकाएक अर्थक्वेक आया, जैसे कल अर्थक्वेक आ गया उधर दिल्ली कलकत्ता की तरफ, छोटा सा वो काफी, और ये छत गिर गई, गर्डर गिर गया, हाहाकार हो रहा है, खून निकल रहा है, हड्डी टूट गई, तो अंतमते सोगति थोड़ी होगी, वातावरण ही वैसा होगा, ऐसे समय में कहाँ याद होगा। लेकिन अंतमति सोगति यानी कि इच्छा मृत्यु का वरदान। बाबा भी इस स्थिति तक पहुंच गया था, तभी तो बाबा ने कहा कि आज बाबा जल्दी क्लास कराएगा। बाबा ने जल्दी क्लास कराई, उसके बाद बाबा उठ करके दरवाजे तक जाते जाते 3-4 बार रुके, हर बार बच्चों को दृष्टि देते थे एक एक को, फिर बाबा एक कदम बढ़ते थे, फिर रुके, फिर एक एक बच्चे को दृष्टि, बस बाबा को हो आज मैं संपूर्ण रीति से बच्चों को शक्तिशाली बना दूं, सारी शक्ति भर दूं। क्योंकि बाबा को तो मालूम था, आज ये अंतिम साकार में मिलन है। शिव बाबा को भी मालूम था कि इस ब्रह्मा के द्वारा, इस शरीर के द्वारा ये अंतिम मिलन है। तो बाबा जाते जाते भी चार पांच बार रुके और एक एक बार एक एक बच्चे को, और बार बार दादी की तरफ बाबा की दृष्टि ठहर जाती थी। इस तरह बाबा गए और हम सब ने सुना है, बाबा ने कहा अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये इच्छा मृत्यु, कमरे में गए, दादी के हाथ में हाथ, बाबा शरीर छोड़ दिया। हम सब की भी जब ये अवस्था होगी तभी अंत मते सोगते इच्छा मृत्यु। क्योंकि हमारी इच्छा के विरुद्ध अगर मृत्यु हुई, बीमारी से हुए, तड़पते हुए हुए, कोई भूचाल आ गया, बाढ़ की वजह से अगर शरीर छोड़ा, वो अंत मते सोगति तो हुई नहीं, वो इच्छा मृत्यु भी नहीं हुई। तो फिर पुनर्जन्म यही इसी कलियुगी दुनिया में लेकर के फिर जो पहले इतने साल वेस्ट हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहता है मनोबल अपना श्रेष्ठ। और वो बाबा ने इस तरह करा, हाँ बस बाबा बुला रहा है और हमें खुद अनुभव हो कि हाँ अब हमारा टाइम आ गया, हम जा रहे हैं। एक ये हमारे जो बाबा को इच्छा दिखा। और अंत में एक पॉइंट के साथ कि जब वंडर तो उसके बाद देखा, आज भी बाबा ने बोला ना प्रकृति के तत्व कब हलचल करते हैं, आज भी मुरली में था ना सत्युग त्रेता में, प्रकृति भी वो सुखदाई, और ये जितना जितना समय गुजरता जाता है प्रकृति के तत्व भी अति हलचल में आते जाते हैं। तो ये बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी की शाम को, रात को मतलब अर्ली इवनिंग, और 18 जनवरी की रात को शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, 21 को, क्योंकि सब बच्चे आ रहे थे, टेलीग्राम आ रहे थे, फोन आ रहे थे, आप रुको हम पहुंच रहे हैं, पहुंच रहे हैं। बड़ी दीदी भी नहीं थी, मनमोहनी दीदी, वो 21 तारीख को दोपहर को पहुंची। फिर दोपहर के बाद 2 बजे के करीब बाबा का संस्कार किया गया। लेकिन वंडर ये यही देखा कि जो काया ना अंत मते सोगते, और साथ ही साथ मन जीते जगत जीत, जगत में प्रकृति भी आ गई, ये 5 तत्वों का शरीर, इसने भी अंत तक बाबा का ऐसा साथ दिया कि लगभग 65-70 घंटे तक शरीर रखा रहा, लेकिन न शरीर में कुछ कालापन आया, न दुर्गंध आई, और न शरीर में स्टिफ अकड़न हुई। नहीं तो आत्मा जब चली जाती है 5-7-10 घंटे के बाद शरीर एकदम स्टिफ हो जाता है, अकड़ जाता है। बाबा का 65 घंटे के बाद भी जब बाबा को हम सब लोगों ने, वरिष्ठ भाइयों ने स्नान कराया 18, 19, 20, 21 तारीख को, तो देखा बिल्कुल बाबा के शरीर में वैसी ही फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे उतने हद तक 100% नहीं लेकिन काफी हद तक पूरी फ्लेक्सिबिलिटी। यह है प्रकृति जीत का लक्षण। मन जीतेगा, मन जीते तो प्रकृति जीत अपने आप होती जाएगी। और ये प्रकृति, क्योंकि न कोई इंजेक्शन, न कोई केमिकल लोशन लगाया गया, न लेप, तो यही बाबा अभी हम बच्चों से भी चाहता है, हम बच्चों का भी ऐसा वो हो कि मन जीते प्रकृति। क्योंकि यही हमारा सबसे निकट का साथी है, सतयुग के आदि से लेकर कलयुग के अंत, संगम के अंत तक यही 5 तत्वों का शरीर है। भले भिन्न भिन्न नाम रूप में होगा लेकिन यही हमारा साथी है जिसके द्वारा पार्ट प्ले करना है। तो इसको तो, तत्वों को तो शुद्ध करना बहुत बहुत जरूरी है। ये अगर शुद्ध नहीं हुए तो ये तो हमें परेशान करते रहेंगे, द्वापर युग से आ जाएंगे, या सतयुग त्रेता में भी अंत में अगर आए तो क्या फायदा हुआ। इसीलिए इनको शुद्ध करना, पावन करना, ये बहुत, और ये बाबा का प्रत्यक्ष हर एक चीज का प्रमाण होता है। तो ये प्रमाण देखने को मिला बाबा का। और इस रीति से ये तो एक बहुत बड़ा वो होता है कैसे एक एक तत्व को हम पावन कर सकते हैं। लेकिन हमें जो बोला गया था रवि, योग का भी समय हो गया है, तो इस रीति से हम अपने को ये चेक करते, हर एक चीज को चेक करना बहुत जरूरी है। और चेक में जहां आवश्यकता हो फिर चेंज करें, और चेंज करके फिर आगे बढ़ते चलें। चेक ही नहीं करेंगे, चेंज नहीं कर पाएंगे, तो फिर आगे बढ़ने का रास्ता भी उतना स्पष्ट नजर नहीं आएगा। इसलिए बाबा का एक ये देखा, बिल्कुल अंत समय में कि लास्ट में ये बाबा ने किस प्रकार से वो करा। और इसको हम स्टेज बाय स्टेज लेते जाएं, स्टेज बाय स्टेज कैसे लेते जाएं, एक एक उस पर, क्योंकि हम सबके सामने पेपर तो आते ही हैं, हर एक के सामने तो बाबा ने बताया, पेपर तो अनेक प्रकार के बताए, लेकिन मुख्य वर्तमान समय के मुताबिक दो पेपर हर एक के सामने आने हैं। कौन से दो पेपर बताए? एक बाबा ने पेपर बताया है शरीर का पेपर, क्योंकि जितने रहे सहे हिसाब किताब हैं वो शरीर के व्याधि के रूप में चुपतू होंगे, उसमें भी मनोबल का पार्ट है। इसीलिए दुनिया में भी कहते हैं अनेक प्रकार की व्याधि होती है, कही जाती है आदि व्याधि और उपाधि, चाहे शारीरिक बीमारी हो, धन की हो, संबंध की हो, कोई भी हो, आदि व्याधि उपाधि, लेकिन इन सब का उपाय है समाधि। समाधि माने कोई घर गृहस्थी छोड़ के जंगल में जाना नहीं, मन को समाधिस्थ कर लेना, यानी मनोबल की को बढ़ाने की प्रैक्टिस करना। तो ये जो है एक पेपर सबके सामने ही आएगा, और उसमें कैसे पास होना है, बाबा कैसे पास हुए, बाबा को एक अभ्यास बहुत पक्का था, शरीर में जब चाहे आने का और शरीर से न्यारा होने का। बाबा तीन जगह मिला करते थे, या तो ये झोपड़ी है यहाँ पर समय दिया करते थे पार्टियों को, या अपने कमरे में, या हिस्ट्री हॉल। अगर दो तीन लोग होते थे बाबा अपने कमरे में मिल लेते थे, तब तो बाबा का कमरा बहुत छोटा था, अभी जितना नहीं, बस जहां तक पलंग पड़ा हुआ है उतना ही, पीछे से रास्ता होता था, अभी भी है, वो बहुत ही छोटा 8x8 का जैसा कमरा था, 6x8 का, और बस बाबा का पलंग, नीचे गद्दा पड़ा हुआ जहां बाबा मिला करते थे, और साथ में एक कुर्सी मेज जहां भोजन किया करते, बस और कुछ नहीं। तो एक तो ये कि जो शरीर का, यहाँ हम देखते थे पार्टियों को टाइम दिया होता था, बाबा के पास पार्टी आती थी, बहन आई, टीचर इंचार्ज, देखती थी बाबा बैठे हैं, आंख भी खुली है, लेकिन बाबा का ध्यान ही नहीं है, टीचर आके खड़ी भी हो गई, बाबा जैसे कहीं और है मन से, फिर बाबा वो का करता था, हाँ वो टीचर जब आती थी, बाबा बाबा एक दो बार बोला तो बाबा को जैसे जर्क सा लगता, ऊपर से बाबा आए, मतलब ऊपर से माने फिर देह में आके, तन में, कोई तन से न्यारे नहीं होते थे, आत्मा नहीं चली जाती, लेकिन जैसे देहवान इतना भूला, फिर बाबा आओ बच्चे आओ, बच्चों से मिल करके फिर पार्टी गई, फिर एकदम देह से न्यारे हो गए। तो एक ये अभ्यास बहुत जरूरी है, समय और संकल्प की अगर सेविंग करनी है, वेस्टेज न हो, जब चाहे हम देह में आए पार्ट बजाएं और जब चाहे चले जाएं। और दूसरा पेपर परिवार का, क्योंकि परिवार का पेपर सबके सामने आएगा, बहुत ऐसे ऐसे व्यक्तियों को देखेंगे, तो हमें ये होना चाहिए कभी भी हम किसी को वर्तमान एक काल के रूप में न देखें, तीनों कालों के रूप में देख करके, तो उस व्यक्ति के प्रति हमारी श्रद्धा कभी भी कम नहीं होगी। बहुत बड़ा विषय है, नहीं तो अक्सर करके ये होता है, वो हमारे व्यर्थ संकल्प चल जाते हैं, ये व्यक्ति तो देखो 25 साल से ज्ञान में है, इसमें भी ये संस्कार, अगर मेरे में भी हुआ, मैं तो अभी 5 साल का हूँ तो क्या। बहुत व्यर्थ संकल्प चलने का एक कारण हमारा परिवार में हमारा संबंध संपर्क या उन सब के डाइल्यूशन होना। तो उसका एक तो हम सदा तीनों कालों की दृष्टि से देखें, और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट बात, बाबा ने कहा है मेरा लास्ट में लास्ट बच्चा भी मेरा चुना हुआ रतन है, आज के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से भी महान है। तो ये हम हमेशा वो रखें कि ये बाबा का सिलेक्शन है, और बाबा का सिलेक्शन कभी भी गलत नहीं हो सकता। बस हर व्यक्ति के प्रति अगर हमारी ये भावना रही ना, तो न कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, न समय व्यर्थ होगा, और हमारा खाता संपूर्ण रीति से जमा होता चला जाएगा। ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। भ्राता जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू।
यही मन